نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تعرف حبيب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سلسلے میں ہم اس ٹاپک کو شروع کر چکے ہیں آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیں گے معجزات اج سے ہر وہ چیز جو عاجز کر دے معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان پھر اس سے اوپر زیادہ سوچ نہیں پاتا کر نہیں سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کے گمان میں یہ کہ آپ کا معجزہ کوئی نہیں تھا چونکہ ہم پچھلے انبیاء کرام کے معجزات دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید موسیٰ کے پاس ید بیضہ تھا اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو اپنے ہاتھ کے پھیرنے کی وجہ سے صحت یاب کر دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو کوئی معجزہ ہمارا نہیں اور اس میں بہت ایکسٹریم بھی رکھی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے ہر ایک کے معجزات صرف اس وقت تک معجزہ تھے جب تک وہ نبی موجود تھے یعنی اگر آج حضرت موسیٰ کا عصا آ جائے اور کوئی اس کو ہاتھ بھی پھیرے جو مرضی کرے لیکن وہ سانپ نہیں بنے گا ید بیضہ نہیں بنے گا وہ لیکن اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کہہ لیجیے بیماروں کو صحیح کرنا تھا یا مردوں کو زندہ کرنا تھا وہ صرف ان کی زندگی تک تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جیتا جاگتا قرآن سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے اس میں اور پچھلے معجزات میں فرق کیا کہ یہ جتنا کل مؤثر تھا اتنا ہی آج بھی مؤثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ قرآن دلوں پہ پھوہار بن کے پڑتا تھا دلوں کو بدلنے کا ذریعہ تھا اور آج بھی ہے یہ قرآن ہی تھا جس نے حضرت عمر فاروق کا دل نفرت سے محبت میں بدل دیا آج بھی کتنے ہی لوگوں کے بند دل یعنی دلوں کے تالے اس قرآن سے کھلتے جا رہے ہیں شرط ایک ہے کہ ہمیں چابی صحیح جگہ لگانی آتی ہو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں اور وہ کہہ کہ اس قرآن کے معجزے کو استعمال کریں ہم جتنا زیادہ قرآن کو عام کرتے جائیں گے لوگ مسحور ہوتے جائیں گے کبھی بھی ری ورڈس یعنی جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں دین میں ان کی زندگی کے حالات پڑھیں 99% لوگوں کا کانسیپٹ یا ان کا دل بدلنے کا سفر قرآن کے اس معجزے سے شروع ہوتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو پڑھیں ہم سمجھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے اور پھر بھی ہمارا معاملہ کیسا ہے اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر تو دل کی دنیا بدل جائے گی ٹھیک ہے دوسرا معجزہ اسراء و معراج سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اسراء اور معراج کیوں کہتے ہیں اسراء آپ کا سفر تھا مکہ سے بیت المقدس تک اور معراج تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یا اس سے آگے جہاں اللہ آپ کو لے گیا پھر ایک اور معجزہ تھا کہ واقعہ اسراء و معراج کے بعد کفار نے کچھ سوالات کیے تھے اچھا جی آپ گئے تھے تو بتائیے ذرا بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے آپ سے میں بھی پوچھوں نا اسکول میں کتنی ٹوٹل کھڑکیاں ہیں تو آپ پچھلے شاید 2 سال سے بھی آ رہے ہوں گے پھر بھی نہیں پتا ہوگا الا یہ کہ کبھی صاف کرنی پڑ گئی ہوں تو پھر گنی ہوں گی کوئی اس طرح جاتا ہے کسی کی کھڑکیاں گننے کے لیے لیکن لوگوں نے سوال کیا تو اللہ نے وہاں سے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تصور اتنا سٹرونگ کر دیا یا وہ کیا تھی ہمیں نہیں اس پہ پتا بس اتنا پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا پھر اسی طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے جنگوں میں مدد ہونا بدر سے لے کے اگلی جنگوں میں فرشتے موجود تھے اور کئی جگہ تو فرشتوں کی آوازیں بھی سنیں گے پھر اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا شق قمر کہتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک دوسری طرف کتنا دل سخت تھا ان لوگوں کا جو یہ دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہ لائے اور کتنا سخت دل ہے ان کا جو قرآن پڑھ کے بھی نہیں ٹوٹتے میں کبھی کسی قرآن پڑھے ہوئے کو دیکھوں اور اس کا بال کا بیکا نہ ہوا ہو यानी मैं सच बताऊं, मैं अक्सर लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स को देख के कुड़ती रहती हूँ, किन की जो कुरान पढ़े हुए हैं, बल्कि आगे मदद भी करते हैं कुछ। प्रोफाइल की पिक्चर, स्टेटस कभी देखो, बाल ऐसे खुले दिखा रहे हैं अपना आप। मैं कहती हूँ इसको कुरान ने नहीं तोड़ा, या शायद वो तसलियां वाला कुरान पढ़ के आया है कि सब जायज़ है, ये भी जायज़ तो वो भी जायज़ तो, ये भी ठीक तो वो भी, सारा कुछ ही ठीक है। बहरहाल तो आज कुरान पढ़ के भी ना अगर दिल बदले तो कहाँ बदलने हैं फिर? फिर कोई नहीं बदलने, इल्ला ये कि अल्लाह कोई इससे बड़ा सदमा तोड़ दे। तीन चीज़ें हैं जो बंदे को बदलती हैं, कुरान, खुशी या गम। कुरान पढ़ के बदल जाएंगे सबसे आसान है, या फिर अल्लाह ऐसी कोई खुशी दे कि जिसके बाद शुक्र गुजारी में सारी सजदे में झुक जाए कि अल्लाह मैंने अब सर नहीं उठाना तेरे आगे, या फिर अल्लाह ऐसा सदमा तोड़ दे ऊपर के सारी दुनिया ही अंधेर हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नतीजा क्या निकलेगा इन सारी चीज़ों का हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद मुस्तकबल की पेशन गोइयों का और उनका दुरुस्त साबित होना, यानी फोरकास्ट। आपके वेदर की फोरकास्ट सही हो जाए तो आप वेदर चैनल को मानने लग जाते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था बारिश होगी, डॉक्टर्स ने कहा था बेटा होगा तो देखो बेटा ही हुआ है, अल्ट्रासाउंड। इतने गैजेट्स के बाद अगर कोई ऐसी बात हो गई तो क्या बड़ी बात थी? और नबी के पास तो कुछ भी नहीं था, ना अल्ट्रासाउंड मशीन थी, ना रेडार्स थे, ना वेदर को डिटेक्ट करने वाली चीज़ें थी। सोचने की बात है। फिर इसी तरह से शैतान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे था, आपका शैतान आपके ताबे कर दिया गया था। हदीस आपने सुनी होगी पहले भी, इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वकद वक्कल अल्लाह बिही करीनहु मिन अल जिन्नी कालू व इय्याक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैयाक काल वैया इल्ला इन अल्लाह आननी अलैहि फसलम फला या मुरुनी इल्ला बि खैर। आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम में से हर एक के साथ एक शैतान जिन साथी मुकर्रर कर दिया। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी? देखिए सहाबा का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था नबी के बारे में। हम तो बाद जब ऐसी बातों को बेदबी और पता नहीं बेइज्जती की बातों पे ले आते हैं ना, साहबा फौरन पूछते थे, अच्छा ये आपके साथ भी ऐसा होता था? क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह के नबी वही के सिलसिले में तो हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, इंसानों में आपका मुकाम बड़ा आला है, लेकिन बशरियत तो मौजूद थी ना। लोगों ने कहा आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने इसके खिलाफ मेरी मदद की तो वो इस्लाम ले आया, बस वो मुझे भलाई के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। ये रिवायत है सही मुस्लिम में 7108। किसी को अगर इसके ऊपर शुबा हो तो इसको पढ़ ले, बाद में भी देखे, लेकिन देखे कि कितना बड़ा मुजजा था नबी का कि आपके पास ये शैतान भी मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर, ईमान की गर्मी शैतान को भी पिघला दे, कहाँ हमारे साथ उठने बैठने रहने सुनने वाले लोगों पे असर ना हो, क्योंकि गर्मी कोई नहीं, टेम्परेचर ही कोई नहीं, तो हीटर के पास बैठे, चलता हीटर या बंद हीटर का यही तो फर्क होता है। बगैर प्लग इन किए आप हीटर के बिल्कुल करीब भी बैठ जाएंगे तो कोई गर्मी नहीं आएगी, ठंड लगेगी। आज हम कुरान ईमान की गर्मी के बगैर पढ़ पढ़ा के फारिग भी हो जाते हैं, और खास तौर पे जब अमली मौके आते हैं तो उस दिन तो हमारे हीटर बिल्कुल बंद के होते हैं, हम उनके प्लग भी उतार के उनको कहीं छुपा छुपू देते हैं। इस क्लासरूम में बैठकर ये सारी बातें करना बहुत आसान है, अमली जिंदगी में जरा सी फ्रिक्शन, जरा से मसाइल इधर से उधर हो जाएं तो हम अपने आप को फिर उसमें पहचान सकते हैं। तो ये तो थे चंद मोजज़ात, और मैं अपने तौर पे अगर बताऊं कि नबी का तो अपना पूरा वजूद ही एक मोजज़ा। कैसे बाप फौत हो चुके हैं आपकी पैदाइश से पहले, और एक बच्चा इसके हाथों से उसके हाथों से इधर से उधर जाकर इतना नफामंद हो गया, बैयना बन गए। सूरह बैयना पढ़ लीजिए, रसूल मिन अल्लाह सुखुफ मुतहर। रसूल का वजूद एक बैयना होता है, रसूल खरे और खोटे का फर्क मिटा देते हैं। अल्लाह के नबी से पहले भी अरब में हर माशरे की तरह अच्छे लोग भी थे, बहुत सारे थे जो फलाह बहबूद के काम करते थे, सोशल वर्क करते थे, उसमें अबू बकर भी थे और उसमें वलीद बिन मुगीरा भी था, उसमें अबू जहल भी था और उसमें उमर फारूक भी थे। लेकिन नबी बय्यना बनकर आए कि लोगों को पता चल गया कि अबू बकर असल में सिद्दीक है, लेकिन वलीद बिन मुगीरा का तो नाम लिए बगैर उसकी 8-10 बातें सूरह मुद्दसिर में बयान कर दी कि कितना बड़ा इस्लाम दुश्मन रहा, एंड तक नहीं बदला, रसूल नहीं बदल सके उसको। और दुआ तो दोनों के लिए थी, उमर बिन खिताब और उमर बिन हिशाम, लेकिन उमर यानी खिताब के बेटे उमर फारूक बन गए और उसको अबुल हकम कहलवाने वाले को उम्मत का फिरौन कह दिया। ये रसूल बय्यना बन के आता है। जब तक वही की बारिश नहीं पड़ी होती, माशरे में सभी लोग घुले मिले फिर रहे होते हैं, लोगों को भी नहीं पता चलता रियल नेक कौन है, लेकिन जब वही की बारिश पड़ती है तो असल खरा खोटा दिखता है। आप देखें ना, बारिश के बाद हर चीज क्लियर हो जाती है। ये कुरान जो आपके मेरे दिल पे पढ़ रहे हैं ना, ये मेरी असल दिखता है। खौफ आते हैं इन चीजों को, आप जाइए तदब्बरुल कुरान में सूरत इकरा बिस्म रब्बी, सूरत अलग है ना, उसकी तफसीर सुनिए, सारा कॉन्सेप्ट उसमें बोला हुआ। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज इस कुरान के मौजज़े के आगे हम भी आजिज़ हो जाएं, हमारी अक्लें आजिज़ हो जाएं, हमारी ज़ुबानें गुंग हो जाएं। इसके बाद नबातात, नबातात के साथ नबी का कैसा मामला था। नबातात समझते हैं ना, प्लांट्स, दरख्तों का कबलस नबूवत शाम में आपके लिए झुक जाना। अब ये बड़ा अनयूजुअल वाक़या था, तो इसकी दलील ले लीजिए, आपके लिए लिखी भी हुई है रही को मखतूम पेज 89 पे, देखिएगा। पहाड़ों और दरख्तों का आपको सलाम करना, दरख्तों का आपके कहने से चलना, आपका खजूर के गुच्छे को बुलाना और इसका आना, फिर खजूर के तने का आपकी जुदाई यानी आपके फराक में रोना, खजूर के ढेर में से आपका गुजरना और ढेर का भर जाना, आपका कीकर के दरख्त से 3 मरतबा गवाही मांगना और दरख्त का गवाही देना। अब ये जितनी मैंने बोली ना, इसी तरतीब से अगर बोल दो ना, तो आपको अल मुस्तदरक हाकिम, अल मोजम कबीर तबरानी की, मुस्नद अहमद, सही बुखारी और सुनन तिरमिज़ी में ये सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। फिर इसी तरह जानवरों के साथ, या जानवरों का आपके साथ क्या मामला था, हैवानात, तो सुस्त और कमज़ोर ऊँटनी को चाबुक लगने से इसका तेज़ रफ्तार होकर सारे लश्कर से आगे हो जाना। ये कहाँ हुआ था, बीबी हलीमा तेरी ऊँचियाँ शाना, वो नबी बच्चा था तो उसकी बरकत हलीमा सादिया के घर और उसके आंगन में फैल गई। आज उन्हीं की उम्मत क्यों बरकतों से खाली हो रही है, सोचने का नुक्ता। फिर सफरे हिजरत में खुश्क और लागर बकरी का आपके दस्ते मुबारक के छूने से खूब दूध देना, सबका जी भरकर पीने के बावजूद सबसे बड़े बर्तन का भर जाना, ये भी तबरानी की रिवायत है, कल वाले पिछले सेशन में भी आपको बताया था, उम्मे माबद साहबिया थी। फिर इसी तरह से सरकश ऊंट को काबू में लाना, यानी ऊंट किसी के काबू में नहीं आ रहा था, सही मुस्लिम की रिवायत है 1658, जिससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी के हाथों में आके वो खुद को सरेंडर करता हुआ दिखता है। फिर आपके प्यार करने पर रोते हुए ऊंट के आंसुओं का थम जाना, यहाँ तो हम बस एक इंसाइक्लोपीडिया करें ना, अगर आपको इन सब की स्टोरी सुनाऊं तो आपका दिल ही नहीं करेगा आगे जाने को। और ये अबू दाऊद की रिवायत है 2549, तो क्या पता चला कि इंसान तो इंसान, हैवानात भी आपकी रिसालत को मानते थे। फिर आपके खाने कैसे थे, ताम, गजवे खंदक के मौके पर एक या दो आदमियों का खाना 1000 आदमियों के लिए काफी हो जाना, याद है किसने दावत की थी नबी की, ये बुखारी की रिवायत है 4101, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, कैसे उनको अल्लाह के नबी पे रहम आ गया कि खंदक खोते खोते अल्लाह के नबी पेट पे 2-2 पत्थर बांध रहे, और बीवी को जाकर कहा कि मेहमानों को लाया हूँ, और अल्लाह के नबी से कहा मैंने आपकी दावत की है, आपने अपने साथ वो सारी टीम पकड़ ली जो साथ काम कर रहे थे, ये नहीं कहा कि ये सारी सहूलतें बस हम बड़ों वालों के लिए हैं और छोटे नहीं। और वहाँ अल्लाह ने फिर ये मामला किया, एक तो ये खंदक के मौके पे एक से ज्यादा वाकया हुआ था, और फिर दूसरा भी खंदक के मौके था, जो कि चंद रोटियां 70-80 लोगों को पूरी हुई, ये हजरत जाबिर का घर था। एक प्याला दूध तमाम असाबे सुफा को काफी होकर बच गया, कौन से साहबी आते हैं इस पे, हजरत अबू हुरैरा, और ये सारी रिवायत बुखारी में है, आप बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से एक बकरी की कलेजी यानी लेवर सफर में 130 अफराद के खाने के बावजूद भी बच गई, ये सच है, ये सही बातें हैं, मत कहा करें कि हमारे नबी के कोई मुजज़े नहीं थे, थे, लेकिन कैसे थे, कहाँ थे, रेफरेंस है तो मान लीजिए, मेरे आपके अमल का तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन रेफरेंस नहीं तो इग्नोर कीजिए। फिर पानी के साथ आपका मामला क्या हुआ? गज़वा ज़ातुर रिकाब में एक कतरे पानी पर उंगलियां मुबारक रखते ही पानी का फूटना और गासियों का सैराब हो जाना, यानी आपकी उंगलियों में से फुवारों की तरह पानी निकला। ये बातें लोग नहीं मानेंगे जो मोजज़ात का इनकार करते हैं और अक्ल की अदालत में इन चीज़ों को पेश करते हैं, वो इनकार करेंगे। कोई कुछ कह देगा, नहीं ये इस्तियारा है, ये फलां है, ये फलां है, लेकिन जो हदीस है वो हदीस मौजूद है, और ये वाली जो रिवायत है सही मुस्लिम की 7519 नंबर की हदीस है। सफरे हुदैबिया में एक कूजा, कूजा कहते हैं प्याला, एक कूजा पानी में दस्ते मुबारक रखते ही उंगलियों से पानी का फूटना और 1500 अफराद को सैराब करना। और ये सफरे हुदैबिया था जो भी थोड़ी देर पहले सूरह तौबा में पढ़ा है। और ये वही थे जो ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिनको हुदैबिया के मुकाम पर जाकर एक सबक पढ़ाया कि इतात का अजर, बोले जिन्होंने किया हुआ हिकमतुन बालिगा मेरे साथ, इतात का अजर इबादत के अजर से ज्यादा है। बात माननी सीखो, इबादत तो करते ही हो, नबी से मोहब्बत के दावे तो हैं, उनकी बात मानना सीखो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इसी तरह से सफरे तबूक में आपका एक औरत के पानी के दो मशकीजों को छूना, मशकीजे के बड़े बड़े सैक टच करना, इससे 40 सहाबा का सैराब होने के बावजूद मशकीजों का भरा रहना और इस औरत के ईमान लाने का सबब बनना। ये किस्सा भी आप हदीस से पढ़ सकते हैं, ये है बुखारी की रिवायत 3571 नंबर। हुदैबिया के खुश्क कुएं में आपका एक कुल्ली पानी डालते ही कुएं के पानी का उबल पड़ना, ये भी बुखारी की रिवायत 3577। फिर दुआओं का फौरन कबूल होना, ये भी नबी की ज़ात के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। हज़रत अनस बिन मालिक जो खादमे खास थे, इनको अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो इनका बाग साल में दो मर्तबा फल देने लगा, यानी लोगों की खजूरें एक दफ़ा उगती हैं, इनकी दो दफ़ा उगने लगी। तबरानी की रिवायत है, आप देखना चाहें तो जाके देखिए, दुआएं रंग लाती हैं, बज़ाहर शुरू में नहीं पता होता, ये बाद में पता चलता है। और जब भी कोई बड़ी अनयूजल नेकी आपसे अल्लाह ले लेना, अपनी तो कोई खूबी आपको दिखनी कोई नहीं है ही कोई नहीं, तो सोच लिया करें ये किसी वक्त किसी की दी हुई दुआ मुझे लग गई है, इसलिए दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ कीजिए। फिर उरवा बारकी को आपने बरकत की दुआ दी, फिर अगर वो मट्टी भी खरीदते तो वो सोना बन जाती, यानी कि रियल में सोना बनती, मुराद जाए कि उनको बहुत नफा मिलता था। ये सहाबी थे और इनका किस्सा तिरमिजी में 1258 पे मौजूद है, आप देख लीजिए। फिर इसी तरह से आपने हजरत अबू हुरैरा की वालदा की हिदायत की दुआ की तो वो फौरन मुसलमान हो गई। किस्सा सुना वह इनकी वालदा के मुसलमान होने का, कैसे बुग़्ज़ करती थी और हजरत अबू हुरैरा से नाराज रहती थी कि तू उसको छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे। जैसे आज भी आप जरा कुरान के साथ ज्यादा वक्त गुजारें या आप जरा ज्यादा ही कुछ बातें करने ही लग जाए तो लोग कहेंगे आपको तो बस एक ही शख्स से प्यार है, आपको तो बस एक ही खपत है, बस अब फिर वही शुरू हो गई, फिर अब वही कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होता है आपको इससे क्या मिल रहा है। लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत 6396 में आता है कि इतना इनकी माँ ने कस्में खा ली ये कि एक दिन ये आए तो ये बड़े दुखी थे कि अल्लाह के नबी माँ नहीं मेरी ये सब कुछ पसंद करती। और आप देखिए जब नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ से ऐसी कोई मुखालफत सुने तो उसको एक डाउट और भी आने लगता है कि पता नहीं हमारी कबूल भी होनी है कि नहीं, क्योंकि कहीं माँ ने दूध ना बख्शने की बात कर देनी है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो अल्लाह के नबी ने दुआ की कि इन्होंने कहा ये भी कहें ये भी कहें, और जब घर गए तो गुस्सल करने की आवाज़ थी, यानी पानी गहरा था, तो वालदा बाहर आई और कहने लगी अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह। अल्लाह अकबर। ये वो रस्ते हैं जिनसे जब अल्लाह बंदे के अमाल को कबूल करता है और उसकी दुआओं को सुनता है तो बंदे को पता ही नहीं चलता। फिर इसी तरह चेहरा मोड़े बगैर आगे और पीछे देख लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउहुम वला खुशूउकुम व इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। अल्लाह की कसम मुझसे ना तुम्हारे रुकू छुपे हुए हैं और ना ही तुम्हारा खुशू, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से देख पाता हूँ। आपको नहीं पता होगा आपके पीछे वाला इस वक्त क्या कर रहा है, किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन ये बुखारी की रिवायत है 741, अल्लाह के नबी को अपने पीछे की चीज का पता लग जाता था, जाहिर है कि वही के जरिए बता दी जाती थी बात। फिर इसी तरह इंसानी आज़ा पर असरात क्या थे, ग़ज़वे बदर में कतादा बिन नुमान की आंख पर आपके दस्ते मुबारक रखने से इनकी बाहर ढुलकी हुई आंख का वापस अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाना और बिनाई का पहले से ज्यादा तेज हो जाना, यानी आंख बाहर ढलक चुकी थी, आप उनकी आंख बाहर ढलकी हुई आंख वापस कैसे गई, यानी जंग में कुछ लगा इधर, ये जो कट होता है ना उनका, तो ये पूरा वो जो अंदर डेला होता है ना वो बाहर आ गया, तो अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से आई ऑपरेशन कर दिया। अब जो नहीं मानेंगे वो ना माने, नहीं मानते तो ना माने, हमें क्या, हमें पता है कि ये बात मुस्नद अबी आला अल मुसली में 1549 नंबर पे मौजूद है। फिर अबू राफे के कत्ल के मौके पर अब्दुल्ला बिन अतीक की, काफ है कौफ नहीं है, अतीक की पिंडली का टूटना और आपका इस पर हाथ फेरने पर पिंडली का ठीक हो जाना, यानी हड्डियां भी जोड़ दी आपने, ये भी रिवायत सही बुखारी 4039 में, और बुखारी में 4210 में एक और रिवायत, हजरत अली की आंखों की बीमारी में आपका लुआब मुबारक लगाने से उनकी आंखें ठीक हो गई। सुभान अल्लाह ही व बिहम्दी। ये सारा कुछ सुनते हुए कुछ ज़हन में आ रहा है, आप कभी किसी चीज को एकदम रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना किया करें। आजकल चूंकि हर वक्त मैसेजेस इधर से उधर, उधर से इधर जाने का रिवाज आम हो गया ना, तो लोग बहुत जल्दी चीजें बगैर रेफरेंस के आगे भी कर देते हैं और इसी तरह से रिजेक्ट भी करते हैं। खामोश रहिए, आपका मेरा काम नहीं है किसी चीज पे झटपट फौरन उसके ऊपर कोई रिएक्शन देने का। अब आगे कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये वो चीजें अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना जो हम अपने अंदर नहीं ला सकते, यानी मैं यार आपको मौजजात अपने हाथ में तो नहीं ला सकते, सिवाय ये कि उसमें से अमल करते हुए कुरान को अपने इर्द गिर्द वालों की हिदायत का जरिया बनाए। अब कुछ चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का हिस्सा थी, यानी जो आपके अंदर मौजूद थी, अगर वन वन वर्ड के साथ भी हम इसको देखें तो आपकी सिफाते मुबारका नरमी और रहमदिली, जूदो सुखा यानी जूद और सखावत मीन इन जनरोसिटी, और जूद जवाद बहुत देने वाले को कहते हैं, बहुत बहादुर, हयादारी, शगुफ्ता मिजाजी, शफकत और मोहब्बत, सिद्क और अमानत, जोहद और तकवा, अमानतदारी, जानवरों से शफकत, यतीम घर वालों, गुलामों, खादिमों और गैर मुस्लिमों से हुस्ने सलूक, मेहमान नवाजी, माहौलियात का ख्याल रखना, बेहतरीन घुड़सवारी, बेहतरीन शौहर, बाप, दोस्त, मुअल्लिम, सियासतदान। कौन सी सीरीज का नाम जहन में आ रहा है? रहबरे कामिल। 19 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पहले भी पढ़ी थी और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड के दिनों में लंदन से दोबारा पढ़ी, रहबरे कामिल के नाम पे वेबसाइट पे मौजूद है। ऐसी चीज़ें आम करें, लोग रबी अव्वल में नबी सल्लम की बातें सुनने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, एक एक दिन का लेक्चर लोगों को भेजिए, एक लिंक ही तो देना, और आगे खुद भी सुन सकते हैं घर में भी, लेकिन अल्लाह के नबी का हकीकी रूप नज़र आता है हमें उस बुक में। फिर इस तरह हेल्म और बुरदबारी, आजजी और तवाज़ो, अदलो इंसाफ, अफ़ो दरगुज़र, सब्रो तहम्मुल, शुजात और बहादुरी, सिला रहमी, अखुव्वत, मसावात, बच्चों से मोहब्बत, मसलहत आमा का लिहाज, यानी आम लोगों की इसलाह या उनकी खैरख्वाही भी थी आप में, बेहतरीन तीरंदाजी, सपाहियाना फ़नून में महारत, यानी वही कहा जाए कि आपकी खूबियाँ का क्या शुमार किया जाए, अल्लाह ने हकीकत में आपको बहुत खूबियाँ दी थी। रश्क तो आता है ना, मैं हमारे जहनों में ये ख्याल भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जैसा कौन हो सकता है, सच्ची बात है कोई नहीं हो सकता, बस ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन, अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर अपनी ये सारी चीज़ों को पढ़ते सुनते वक्त हमें इसमें सब देखना है। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अदब रसूल, नबी सल्लम का अदब, मैनर्स विद हिम, क्या करना चाहिए मुझे आपको। नंबर एक, नाम लेकर मुखातिब करने से गुरेज करना। नबी का नाम नहीं लिया जा सकता। इलामा ज़मख़्शरी कहते हैं, तुम या मोहम्मद ना कहो बल्कि तुम या नबी अल्लाह कहो। मसलन अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल आपके रब की तरफ से जो आप पर नाजिल किया गया है इसे आगे पहुंचा दे। या अल्लाह ने अपने नबी को क्या कहा, या अय्युहर रसूल। फिर या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, ए नबी आपको अल्लाह काफ़ी है। अनफाल 64 है, पहली आयत मायदा 64 थी। दोनों आयतों में क्या फ़र्क आया, एक जगह आपको या अय्युहन नबी और एक जगह या अय्युहर रसूल कहा गया। अल्लाह तो नाम भी ले सकता था, पूरे कुरान में कहीं लफ्ज़ या मोहम्मद नहीं है। अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दफ़ा है लेकिन या के साथ नहीं। आज हम में से कुछ मुसलमानों की तसल्ली ही नहीं होती जब दीवार पे कताल या अल्लाह का और उसके बराबर में या मोहम्मद ना लगा दें। याद रखिए, ये गलूब है, ये वही चीज़ें जो क्रिश्चियंस ने होते होते करते करते हज़रत ईसा का नाम खुदाई पे ले गए। आप भी ये बंद ना बंदा हो उलमा की तरफ से तो मोहब्बत में दीवाने पता नहीं नबी को ऊपर भी कह रहा है अल्लाह से। कहते हैं काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हूँ, काबे का भी काबा मीठे नबी का रोज़ा। क्या ये अल्लाह के नबी का नाम अल्लाह से भी ऊपर करना नहीं है? लेकिन मोहब्बत में जो सब जायज़ है जी, बेइल्मी और जहालत में लोग ऐसे ही करते हैं। फिर पुकारने में एहतियात करना, अल्लाह ताला का इरशाद है, ला तजलु दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना न बनाओ। यानी कैजुअल टॉक नहीं चाहिए नबी के साथ, वो तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ हो जाते हैं, तुम ना हुआ करो। सूरह हुजरात के आयत 2 है। आप देखिए, बड़े बंदे के साथ आप जरा से बेतकल्लुफ हो तो वो आपको रोक देगा, वो आपके साथ बेतकल्लुफ हो जाए तो ये उसकी शान है कि उसने आपको इज्जत बख्शी। नबी सल्लम के साथ इल मैनर्स नहीं चल सकते, आपको हमेशा इज्जत दी जाएगी। आप अपनी आजजी में बहुत सिंपल थे, दूर से लोगों के दिल में आपका रोप आता था और जब के करीब आता आप कहते कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि साहबा ने इसे कोई गलत तरीके से फ़ायदा लिया और आपको इजी गोइंग ले लिया, ऐसा भी नहीं था। फिर आवाज़ पस्त रखने का हुक्म है नबी के सामने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। बुलंद करना आज कैसे होगा, आपकी हदीस आ गई और आप कहते नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो फतवे को मानता हूँ, मैं फलां कॉल को मानता हूँ। आप ये जो लफ्ज़ मानते हैं ना कि किस इमाम की बात सही है किसकी नहीं, अक्सर हमारे मुल्क में 4-5 डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं ना, जिसमें हम हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। अब ये चारों आइमा कराम के नाम लेते हैं, अगर इनमें से किसी के सामने आप कुछ सही हदीस पेश कर दें तो कुछ ना समझ लोग कहते नहीं हदीस को नहीं मानेंगे, क्या इमाम मालिक को नहीं पता चला था ये मसला, क्या इमाम अबू हनीफा को तो नहीं पता। ये है नबी पे बात ऊपर करना, हदीस के मुकाबले पे कॉल को ले आना, ये गलत है। ठीक है, वो तो चारों आइमा किराम खुद कहकर गए कि अगर हमारी कोई बात तुम्हें हदीस के खिलाफ दिखे तो हमारी बात छोड़ के हदीस ले लेना, क्योंकि हमने कब दावा किया कि हमने सारी हदीसें पढ़ ली या सारी समझ गए। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन आवाज़ पस्त बुलंदी। और इसके अलावा और क्या तरीका होगा, रोज़े पे जाकर ऊंची ऊंची आवाज़ें देना और ये सोचना कि अल्लाह के नबी आप सुन के जवाब दें, और अगर जवाब आ गया तो क्या करेंगे आप। यानी ये भी कुछ हमारे कल्चर में चीज़ें बैठी हुई हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हुक्म भेजना। अल्लाह सुब्हानहु तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलैन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी इन पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजो। सूरत अल्लाह साहब की आयत 56 है। तो इसकी रोशनी में नबी सल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का एहतमाम करना चाहिए। अब तरीका उसका क्या इख्तियार किया जाएगा वो भी तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, लेकिन बहरहाल ये कि अल्लाह के नबी के साथ ऐसा मामला किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें ज़रूर ही नबी सल्लम से करीब करेगी और हम पेन फील करेंगे और अपने दिलों को भी चेक कीजिएगा, कि किसी अपने भाई बहन खानदान के किसी शख्स की कोई तकलीफ कोई मुश्किल सुनकर देखकर ज्यादा दिल कुड़ता है या नबी सल्लम के सानेहात और मुश्किलात को पढ़ के। यानी इस बाब में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको क्या मुश्किलात पेश आई, और ख़ास तौर पे दीन के पैगाम में कौन सी क्लेमिटीज थी आपकी लाइफ में। तो पहली चीज़ है इसमें वाक़ ताइफ। नबूवत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत के लिए बैरून मुल्क ताइफ तशरीफ़ ले गए। आपके हमराह आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम जैद बिन हारिसा भी थे। रास्ते में जिस कबीले के पास से भी गुजर होता इसे पुर नूर रास्ते की तरफ दावत देते। ताइफ पहुंचकर कबीला सकीफ के 3 सरदार भाइयों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन तीनों ने इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बदीगरे एक एक सरदार के पास दावत के लिए तशरीफ ले जाते, लेकिन इन सब का एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 दिन के क़याम के बाद वापस मक्का तशरीफ़ लाने लगे तो ये ओबाश आपको गालियाँ देने लगे, तालियां पीटने और शोर मचाने के साथ साथ वो आपको पत्थर मारते जाते। अगरचे जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ढाल बनकर पत्थरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर इतने ज़ख्म आए कि दोनों जूते खून से तर बतर हो गए। नीज जैद के सर में भी कई जगह चोट आई। बिलाखर जब आपने मजबूर होकर बनू रबिया के बाग में पनाह ली तो ये लोग वापस चले गए। इस मौके पर आपने दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तदअफीन के नाम से मशहूर है। आती है किसी को? अल्लाहुम्मा इलैका दाफ़ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास इला मन तकिलुनी इला बईद यतजाखुमन। यानी वो मैं अक्सर पढ़ाते हुए कहती हूँ कि इस दुआ को निचोड़ें तो अंदर से ऐसे लगता है खून गिरता है, इतनी खूबसूरत दुआ है। हमारे वक्त शिकवे तो करते हैं, हमें गम है तकलीफें हैं खानदान नहीं मानता ये, लेकिन ये दुआएं नहीं पढ़ते और मांगते भी नहीं। किसी को भी अपने खास तौर पे दीन के नाम पर कोई मुश्किल कोई प्रेशर कोई सोशल किस्म का प्रेशर है ये दुआ मांगी। ऐसे नहीं कि पढ़े पहाड़ों की तरह, आप उसके तर्जमे पे नजर डालें आप खुद ही रोने लग जाएंगे। मुझे दुश्मन के हवाले करता है इला बईद के गरीब के, वो तो मेरे पर जुल्म ही करेगा, अल्लाह बता तुम्हें किधर जाऊं। अल्लाहुम्मा इलैका दाफ़ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। अल्लाह मेरे पास हीला कोई नहीं वसीला कोई नहीं, मैं लोगों पे बोझ बन गया हूँ। इला मन तखिलुनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? इला बईद गैर के और अदुव या दुश्मन के या तजहमनी जो मेरे साथ जहालत बरतेगा। यानी ऐसे लगता है जैसे अल्लाह के नबी सामने खड़े होके अल्लाह ताला के सब बातें कर रहे हैं। तो दुखों तकलीफों में ये मौका। फिर इसी तरह अब आप अपने ऊपर लीजिए, कभी हमें इस्लाम की दावत फैलाने में ऐसा मौका आया? और आए तो सही, फिर हम दोबारा जाएं उनके पास? हम तो फूल पकड़कर इस्तकबाल करने वालों के पास तो शायद दोबारा चले जाएं, पत्थरों और कंकरियों को पकड़कर जो हमारा इस्तकबाल करें हम तो कहेंगे रहें घर में। आज हमें से किसको दीन के लिए निकलने में खैर और उसमें अल्लाह ताला की रहमत दिखती है? और मैं कहती हूँ जैसे हम छोटे हमारा ईमान भी थोड़ा, तो हमारे साथ छोटे से ईमान के साथ इतनी इज्जतें और इतनी लोगों की बातें, पता ही नहीं चलता कि आप अल्लाह के लिए जा रहे हो कि अपने लिए जा रहे हो। जहां आपको रिस्पॉन्स ना मिले वहां जाइए। आप लोगों को दावत नहीं देंगे? आप किसी के सर पे एहसान करते हैं दावत देकर जाते हैं तो? आप अपने इस शहर में ना फिरें तो बाहर किधर जाएंगे? आप इस मुल्क में ना गए तो दूसरे मुल्क में कहां जाएंगे? ठंडे बैठे हैं, रोज आ नहीं जाते हम स्कूल में, आना है तो जी आए, नहीं आते तो फिर हम क्या करें? ये टोन तो नहीं थी अल्लाह के नबी की। जिसने ये दर्द पाल लिया ना उसके सारे दर्द दूर हो गए, सीधी वो दर्द नहीं दलिद्दर भी दूर हो गए। ये दुनिया की खपाइयां और मुसीबतें और मुश्किलें जाती तब है जब बंदा फोकस होके सारे गमों और सारे दुखों और सारे दर्दों से बेनियाज होकर अल्लाह के इस रास्ते में भागता ही जाता है भागता ही जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा मसरूफ बहुत है, टाइम ही नहीं है। वो इतनी मुश्किलात के दौर में इतना कुछ कर गए और हम कहते हैं करें क्या, हमारे पास वक्त नहीं है ना। आपको क्या बताएं हम कितनी मुश्किल से जाते हैं, हमारे घर वाला हमारे रास्ता देख रहे होते हैं कब आएंगी वापस, और जाके करना भी क्या है। यानी छोटे छोटे काम हमारे लिए बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स बन गए। और फिर इसके बाद देखिए शाबे अभी तालिब की महसूरी अल्लाह की बना, نبوت کا ساتواں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، جب آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے اور تمام دشمن قبائل کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور دیگر افراد کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا. 3 سال آپ کا کرونا پیریڈ کتنا تھا؟ لاک ڈاؤن کتنے ٹائم کے تھے؟ اور کیا لاک ڈاؤن میں نہیں ملتا تھا کھانا؟ کوئی ایک دن بھی بھوکے رہے؟ بلکہ اور ہی پھرپ لیا گھروں میں. اور اللہ کے نبی کا لاک ڈاؤن 3 سال کا، جب لوگ اس گھاٹی ایسی جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، اونچی اونچی دیواریں اور اس کے 4 دیواری کے اندر لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. پینے میں کھانے میں نہیں، جو باہر سے قافلہ آتا مکہ والے بھاری قیمتیں دے کر اس کا سارا مال خرید لیتے، مسلمانوں تک ایک دانہ نہ پہنچنے دیتے. کتنا آسان ہے کرسی میں سجا کر چائے کا کپ رکھ کر دین کی بات کرنا، سیرت پڑھنا اور پڑھانا، اور آرام دہ کرسیاں اور گھٹنوں پہ کمبل بلینکٹ رکھ کر پاؤں میں کشن رکھ کے دین سیکھنا اور خود چل چل کے پھر پھر کے رہنا. واللہ ہی اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. ایون اگر آج مشکلیں بھی نہیں ہیں نا اتنی، آپ اس کام میں اپنی جان کو کھپا کر دیکھیے جو اللہ آپ کے لاڈ کرتا ہے، کیا کسی نے کرتے ہیں؟ آپ کو گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کی بہت لاڈلی ہوں، اللہ میری نہیں موڑتا. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، یہ لاڈ اور پیار بن جاتا ہے. نبی کی یہ سنت آج امت سے نکلتی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے عام الحزن، غم کا سال، نبوت کا 10واں سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے عام الحزن کہلاتا ہے. 2 صدمے پڑے، باہر کی دنیا میں ابو طالب سہارا تھے، وہ چلے گئے، اور جب باہر کے غم گھر میں لے کر آتے تو خدیجہ تھیں جو زخموں پہ اپنے دوپٹوں کی دھجیاں باندھتی تھیں، گھر سے وہ بھی چلی گئیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ مصیبت اکیلی نہیں آتی، یہ تھا وہ 10واں سال جب آپ دکھی رہتے تھے، تبھی تو پھر آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا کہ آئیں ہم آپ کو سیر کرا کے لاتے ہیں، اور اسی میں پھر محجر مدینہ بھی دکھا دیا اور پچھلے انبیاء کے رستے بھی دکھا دیے. دل لگایا آپ کا اللہ نے، دل بہلایا آپ، اور ہم کہتے ہیں آرام سے جی آؤ سیرت پڑھتے ہیں. ایک بال برابر دل پہ چوٹ نہیں پڑتی سیرت پڑھتے بڑھاتے ہوئے. یا اسائنمنٹوں کا غم پڑا ہوتا ہے لوگوں کو، یا کچھ اس کے امتحانات کا. اور یہ تو آپ کو علم اور غم اور تکلیفیں دکھ رہی ہیں نا، اگر اللہ کے نبی کے اوور آل دیکھیے تو غزوات کتنے تھے. صرف ابھی آپ کو میں نام بولوں گی اور آپ کو نام بھی نہیں پورے آئیں گے، یقین کیجئے. کون سے تھے؟ دیکھیے گا، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں مارکہ حق، حق کے مارکے میں تھے نا. غزوات العبوا، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، سفر 2 ہجری میں ہوا تھا. غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا. غزوہ العشیرہ، جمادی الاول جمادی الثانی میں ہوا 2 ہجری میں. غزوہ صفوان، جس کو غزوہ بدر الاولی بھی کہتے ہیں، جمادی الثانی 2 ہجری میں ہوا. پھر غزوہ بدر الکبریٰ، 9 رمضان 2 ہجری میں ہوا. غزوہ بنی سلیم، غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد ہوا. غزوہ سویق، ستو کو کہتے ہیں سویق، اور غزوہ قرقرۃ القدر، یہ جگہ کا نام ہے، ایک ہی غزوہ کے یہ 2 نام ہیں، ذی الحج 2 ہجری میں ہوا. غزوہ ذی امر، ذی الحج ذی القعد 2 ہجری میں ہوا. غزوہ الفرا، ربیع الثانی 3 ہجری میں ہوا. غزوہ بنی قینقا، نصف شوال 2 ہجری میں ہوا. غزوہ احد، شوال 3 ہجری میں ہوا. غزوہ بنو نذیر، ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا. اور غزوہ ذات الرقاء، ربیع الثانی جمادی الثانی تک 4 ہجری میں ہوا. یعنی ایک ایک کو نام کو بعد میں گنیے گا، بھی دیتی ہوں ایس پی ایکٹیویٹی. غزوہ بدر الاخرى، شابان 4 ہجری میں ہوا. غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا. غزوہ خندق، شوال 5 ہجری میں. غزوہ بنو قریظہ، ذوقعدہ 5 ہجری میں. غزوہ بنی لحیان، جمادی الاول جمادی الاولی 6 ہجری میں. غزوہ بنو المستلق، شابان 6 ہجری میں. غزوہ خدیبیہ، ذی القعدہ یا ذوالقعدہ 6 ہجری. اور غزوہ ذی قرد، غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے ہوا. غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں, غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری میں, غزوہ فتح مکہ غزوہ حنین شوال 8 ہجری, اور غزوہ طائف شوال 8 ہجری, اور غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں ہوا. کام اگر آپ کا دل کرے کرنے کو تو یہ جتنے غزوے ادھر ہم نے دیکھے ہیں نا, ان سب کے بیچ کا گیپ لکھ کر لائیے گا اگلی کلاس سے پہلے. پھر بتائیں گے کہ ہم زیادہ مصروف ہیں کہ اللہ کے نبی. اور وہاں جنگیں تھیں, تیر تھے, تلواریں تھیں. ہمیں تو اتنے درس بھی کرنے پڑ جائیں تو ہم کہیں گے ہائے اتنے, ابھی تو آئے تھے پھر جا رہے ہیں, ہائے تھک جاتے ہیں, سفر بڑا مشکل ہے, سامان باندھنا, اٹھانا, لے جانا, کرنا کرانا. لیکن نبی کی ذات کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا. تو یہ تھا آج کا سیشن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کے میں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.